दशलक्षण धर्म की बात देख रहे हैं तो ये पर्याय की बात है। हमें धर्म प्रकट करना है तो धर्म तो एक ही है और वो है वीतराग भाव। वीतराग भाव का अर्थ क्या है कि हमारा स्वभाव कैसा है तो राग रहित हमारा स्वभाव है, उसमें कभी राग हुआ ही नहीं है। और पर्याय में जो वीतराग कहते तो पर्याय में अनादि से मोह राग द्वेष चल रहे हैं और उनका अभाव होकर वहाँ वीतराग दशा वीतने बीत जाना वीतराग दशा उत्पन्न होती है। तो वहाँ जब जब वीतराग दशा उत्पन्न होगी तब से धर्म की शुरुआत होगी। तब तक जो किया है सारा वो क्या है, हम जैनी है, हमारे बाजू में अन्य अन्य मति रहते हैं तो उन सबको हम क्या कहते हैं, अजैन कहते हैं। जो धर्म नहीं है जब तक वीतराग भाव नहीं हुआ है तो वीतराग भाव नहीं है तो राग भाव है। तो राग भाव दो प्रकार का होता है, कौन सा, शुभ भाव अशुभ भाव, यानी पुण्य और पाप, वो सारा क्या है, अधर्म है। ये इसे बोलने को बराबर नहीं होते, धारस नहीं होता कि अभी तक जो हमने पुण्य किया वो अधर्म किया, ऐसा कोई बोलेगा क्या? उसको सही तो हमें एक्सेप्ट करना है कि जो धर्म नहीं वो अधर्म है। वो पुण्य को धर्म कह देते हैं, किसके पुण्य को, जिसने धर्म प्रकट किया है, ऐसे जो सम्य दृष्टि जीव है हाँ उसके पुण्य भाव को भी धर्म कह देते हैं। और उनके पुण्य कैसे कैसे होते हैं, जो मुनिराज है उन्होंने तो धर्म प्रकट किया है, वीतराग दशा अधिक मात्रा में हो गई, जो चौथे गुणस्थान वाले ने जो आत्मा का अनुभव करके जो वीतराग दशा उत्पन्न हुई है उससे पांचवें वाले की ज्यादा है, उससे मुनियों की तो और अधिक है। ऐसे मुनियों के जो कुछ उनके पुण्य भाव है उसको भी धर्म कह देते हैं और उसका वर्णन यहाँ करते कि ऐसा करो ऐसा उपदेश भी होगा। परंतु सच्चा धर्म क्या है, तो जो वीतराग भाव उत्पन्न हुआ है वही धर्म है। और ऐसे वीतरागी जो उन्होंने वीतरागता प्रकट की है, अभी पूर्ण वीतराग नहीं हुए है, ऐसे जीवों के जो शुभ भाव है पर्याय में उसको भी व्यवहार धर्म कहते हैं। व्यवहार से इन्हें है नहीं कह देना, पर किसको, जिसके वीतराग भाव प्रकट हुए हैं उसके, क्योंकि चारित्र गुण है तो उसके दो धाराएं चलती है। जब से सम्य दर्शन होता है एक वीतराग धारा और एक राग धारा, जितने प्रमाण में कषाय उनका अभाव यानी अनुदय हुआ है तो उतनी तो वीतरागता है, और उसमें जो जितने कषाय है उसके तो राग धारा है, यानी वीतराग धारा और राग धारा दोनों साथ साथ चलती है। कब तक, जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हुए तब तक। आपको पहले बार एक बार बताया था कि मिथ्या दृष्टि जीव है उसको चारित्र है कि नहीं है, नहीं है। आप क्या कहते हैं, चरित्र है, अभी क्या कहेंगे नक्की करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं बहन, मिथ्या दृष्टि को चारित्र है कि नहीं, अपन नक्की करते हैं चारित्र नहीं है। आप क्या कहते हैं, हाँ आत्मस्थिरता नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, मिथ्या चारित्र है, चारित्र जैसे ज्ञान है कि नहीं तो मिथ्या ज्ञान है, उसको दर्शन है मिथ्या दर्शन चल रहा है, तो चारित्र है कि नहीं उसके, क्या चारित्र गुण नष्ट हो गया उसका, चारित्र की पूरी पूर्ण विभाव पर्याय चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको मिथ्या चारित्र चल रहा है। तो मिथ्या दृष्टि को मिथ्या चारित्र चल रहा है तो उसके चारों कषाय चौकड़ी भी विद्यमान है, उसको अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वल है, अभी उसको सम्यक दर्शन हुआ, चौथा गुणस्थान हुआ, तो उसको चारित्र दशा यानी कौन सी वितराग यानी सम्यक चारित्र उत्पन्न हुआ है, उसके अनंतानुबंधी नहीं रहे, तो यहाँ कौन सा चारित्र उत्पन्न हुआ है उसको, तो कहते स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न, उसको कहेंगे स्वरूपाचरण चारित्र, उसने स्वरूप का आचरण करके उसका अनुभव ले लिया है, उसको कहेंगे स्वरूपाचरण चारित्र। जो अधिक आत्मस्थिरता होती है तो उसका अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं रहा, तो उसको जो चारित्र उत्पन्न होता है उसको कहेंगे देश चारित्र। मुनि राजाओं को ये प्रत्याख्यानावरण भी नहीं रहा, एक संज्वलन रहेगा, तो उनके चारित्र को कहेंगे सकल चारित्र। और जो पूर्ण वितराग होते हैं, 11वें 12वें 13वें 14वें वाले जो गुणस्थान वर्ती हैं, बिल्कुल राग नहीं रहा, तो कोई भी राग नहीं रहा, तो उसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र। तो मिथ्या दृष्टि को भी चारित्र गुण है, पर वो पूरे पूर्ण मिथ्या चारित्र चल रहा है। और सम्यक चारित्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो चौथे गुणस्थान से। वितरागता बढ़ती चली जाती है, राग घटता चला जाता है। तो यहाँ ये जो उत्तम शब्द लगाकर ये जो हम 10 प्रकार के लक्षण देख रहे हैं, एक ही धर्म के 10 लक्षण देख रहे हैं, 10 अलग अलग धर्म नहीं है। तो यहाँ आज का जो विषय अपना है उसका नाम मालूम है, उत्तम आकिंचन्य धर्म। ये आकिंचन्य क्या होता है उसकी थोड़ी हम बात देखते हैं यहाँ पर, कि अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना, यानी मैं कौन हूँ, 7 तत्वों की भाषा में बोलना है तो मैं जीव तत्व, और ऐसा कहना है तो मैं पारिणामिक भाव, 5 भाव में कहना तो मैं परम पारिणामिक भाव रूप हूँ, उसी को कहेंगे मैं स्वभाव भाव रूप है, मैं ज्ञायक भाव रूप हूँ, उसको मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक ही चीज को अलग अलग नामों से यहाँ बता रहे हैं। शुद्ध आत्मा क्यों कहा, क्योंकि स्वभाव तो हमेशा परिपूर्ण है, जैसा का वैसा है, उसमें कोई राग द्वेष कभी मिले ही नहीं, स्वभाव की बात चल रही। एक होता है स्वभाव और एक होता है उसका परिणाम यानी पर्याय। पर्याय में राग द्वेष के होते हुए उसी समय स्वभाव शुद्ध ही है, उस स्वभाव को ही निज शुद्ध आत्मा कहा है, उसी को पारिणामिक भाव कहा है, उसी को यहाँ स्वभाव भाव कहा है। तो मेरा स्वभाव कैसा है, ज्ञान दर्शनमय, उसी से बना हुआ है, इसको सुखमय कहते हैं, आनंदमय कहते हैं, उसको ज्ञान का घनपिंड कहते हैं, चैतन्यमय कहते हैं। वो वर्णन शब्दों में कितना कैसा कहे, ऐसा नहीं कि अंदर ज्ञान भरा है और उसमें कोई आवरण है और ये चीज तैयार हुई, ऐसा तो ही नहीं, वो पूरे पूरा का पूरा चैतन्य का घनपिंड है, ऐसा कहेंगे। तो अपने ज्ञान दर्शनमय स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं। अभी अन्य किंचित मात्र में क्या क्या ले, लिस्ट बनानी, बोलो। हाँ देखो, पहले में पहले राग द्वेष को भी अन्य किंचित, क्योंकि हमारा ज्ञान और दर्शन मय स्वभाव में राग द्वेष नहीं है, पर्याय में है, और वो भी किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। पहले में पहले उसकी स्वामित्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि यहीं छोड़ना है। तो राग द्वेष मेरा नहीं, तो शरीर तो मेरा होगा कि नहीं होगा, और शरीर मेरा नहीं है परंतु धन तो मेरा है, बच्चे तो मेरे हैं, ये रिलेटिव्स मेरे हैं, ये समाज मेरा है, हमारे भगवान तो मेरे हैं कि नहीं है मेरे, क्या कहा यहाँ। एकमात्र वो चैतन्य मात्र चिन्मय जिसको कहेंगे, ज्ञान दर्शन मैं जो मेरा स्वरूप है वो मैं हूँ, और मैं उसी को कहा तो मैं छोड़कर बाकी सब मेरा कुछ भी नहीं, इस विश्व में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं, यानी किसी अन्य द्रव्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है इस विश्व में। पहले में पहले हम संबंध संस्थापित करने के लिए इतने उतावले होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं, किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई संबंध तो नक्की करते हैं, अरे इसका मैं निमित्त तो हूँ कि नहीं, मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है कि नहीं, अरे मेरा गेय ज्ञाय संबंध तो है कि नहीं है, कर्मों के साथ मेरा एक क्षेत्रावा का संबंध तो है कि नहीं है। अभी तो इतनी बातें बताई है कि हम तो यहाँ आए थे माँ के पेट में तो कुछ नहीं लेके आए थे, तो ये पर्याप्ति तो तैयार हुई, तो हमने शरीर को परिणमाया कि नहीं परिणमाया, हमने खुद अपनी शक्ति से परिणमाया, और आप कहते शरीर तुम्हारा नहीं है, ये कैसी बात है। तो जीव ने थोड़े उसको बुलाया है, ये सारे कर्मों के उदय में बातें बनी है, शरीर नाम कर्म के उदय में वो जीव यानी शरीर के परमाणु आए हैं, पर्याप्त नाम कर्म के उदय में उसकी पर्याप्तियां बनी है, वो हर एक एक में जितनी इंद्रिय वाला है, जाति नाम कर्म के उदय में जो कितनी इंद्रिया बननी वो नक्की हुआ, स्वर नाम कर्म के उदय में शरीर भाषा पर्याप्ति हुई है, हर एक में ले लेना, विश्वास नाम कर्म के उदय में वो विश्वास हो गया है, तो ये सारा कर्मों का बुलाया हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं चलता। जैसे जैसे पुराने कर्मों के उदय है, वो भी जीव ने जीव के मोहराग द्वेष के निमित्त से ये सारे बंधे हैं, और उसका उदय होता है तो उस फल रूप वैसा वैसा शरीर बनता है। इसमें जीव ने क्या किया, बस उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध पड़ा, यानी यहाँ कर्मों के उदय में शरीर भी आता है, उसकी रचना होती है, और जीव में मध्य में जो कुछ उसका निमित्तपना बनता है, यानी वो कर्म ने ही शरीर को बुलाया, उसी ने उसकी रचना की है, वो मेरा कुछ नहीं है उसमें। ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, और जीव को लगता है देखो मैं बोलता हूँ, मेरा शरीर है, मैंने उसको बराबर ठीक ठाक रखा है, मैंने उसको मेंटेन किया है, लगता है ना, और मैं उस रूप हो गया। ये जीव की भ्रांति है। यहाँ क्या कहते, मैं कौन हूँ, तो मैं जीव तत्व, मेरा क्या है, मेरा स्वभाव वही मैं, वो मेरा कहना ये भी उपचार है, क्योंकि मैं और मेरा ऐसे दो भेद किए, परंतु समझाने के लिए कहेंगे हम, परंतु सच में मेरा उसी को हम मेरा कहते हैं, वो तीन काल में मुझसे दूर नहीं होता, वो मेरा है, बाकी वो मेरा कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान दर्शन स्वरूप मेरा है, तो जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा तो ये ज्ञान दर्शन स्वभाव रहेगा कि यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा, हाँ रहेगा ना, क्योंकि स्वभाव उसी को कहते हैं जो अनादि अनंत होता है, स्वयं सिद्ध होता है, परिपूर्ण होता है, एक सदृश होता है तीनों काल में, स्वसहाय होता है, उसको हम असहाय भी कहेंगे। कितनी कितनी बातें हमने स्वभाव के बारे में देखी, वो मैं हूँ तो वो मुझसे, यानी मैं स्वभाव रूप ही हूँ, तो स्वभाव और मैं कभी जुदे जुदे हो ही नहीं सकते, यानी इतनी बिल्कुल निराकुलता हो जाती है, क्योंकि जब तक हम पर्याय में मैंपना स्थापित करते हैं, और पर्याय तो नष्ट होने वाली है, तो हाय मैं मर गया, अभी मैं मर जाऊँ तो मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, ये सब मैंने इतने लोग कहते हैं मैंने इतना पुरुषार्थ से कमाया है, अब इसका क्या होगा, तो मेरा तो उसी को कहो कि जो तीन काल में मुझसे दूर नहीं हो वो मेरा है, बाकी जो कुछ संयोग है, जो कोई पर्याय है, वो तो जुदी है मेरे से, वो जुदी है, वो है, जैसे मेरा अस्तित्व है अन्य चीजों का भी अस्तित्व है, परंतु वो मेरे नहीं है। देखो ऐसा है कि विश्व में जो कोई शब्द होते हैं उसका वाचक कोई पदार्थ होता ही होता है, जैसे सिंह शब्द है तो सिंह नाम का कोई वहाँ प्राणी है ही है, फूल कहते हैं तो फूल भी है, झाड़ कहते हैं तो झाड़ इन्हें पेड़ भी है, ऐसे ही आकाश तो आकाश भी है, परंतु आकाश का फूल होता है क्या भाई, आकाश का फूल जरा विचार कर ले, आकाश है कि नहीं, आकाश है, और फूल भी होते कि नहीं होते, होते, तो आकाश का फूल होता है कि नहीं होता, मालूम नहीं है, गधा गधा देखा है, गधा होता है, सिंह भी, सिंह नाम की कोई चीज होती है ना, होती है, गधे का सिंह नहीं होता। ये बीच में हमने रिलेशन जोड़ दिया ना, तो मैं हूँ, पर भी है, घर घर भी है, तो मेरा घर कहाँ से आया, मैं हूँ, बालक है, ये मेरा बालक कहाँ से आया, यानी सब चीजों के साथ वो हमने रिलेशन जोड़ने की कोशिश कर दी है। सभी वस्तुएं इस विश्व में है, वो अनादि अनंत विद्यमान है, और उसमें मैं तो ज्ञान दर्शन मैं हूँ, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है, ये कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं ना, तो क्या क्या नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, धन संपत्ति मेरी नहीं है, ये ज्ञान आदि की हीनता मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो स्वभाव रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, और ये वर्तमान में पर्याय में तो हीनादिकता हीन दशा चल रही है, उस रूप मैं नहीं हूँ, तो मेरे में क्या रह गया, एक बड़ा जीरो रह गया ना, जीरो रह गया, बात सही है, भी जीरो रह गया। आप क्या कहते हैं, ये शरीर मैं नहीं, ये पैसा मैं नहीं, ये संयोग नहीं है, घर मेरा नहीं है, सब मेरा नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है, राग द्वेष भी मेरे नहीं, मेरे में एक बड़ा जीरो रह गया, ऐसा मैंने पूछा तो बराबर है कि नहीं है, पीछे कोई कहेंगे, आप क्या कहते भैया, हाँ अरे पूरा स्वभाव है जो परिपूर्ण है, असीम है, अमर्यादित है, वो पूरा का पूरा मैं हूँ, ये दो कथन आते हैं, एक अस्थि से और एक नास्ति से। जब हम कहते हैं कोई चीज सफेद है, तो सफ़ेद है, अगर नास्तिक कहना है तो कहेंगे ये काला नहीं है, पीला नहीं है, नीला नहीं है, लाल नहीं है, अभी जितने कलर बना उसमें नहीं है, वो नास्तिक का कथन होता है। अस्थि से कुछ है कि नहीं है तो अस्थि से कहेंगे ये सफ़ेद है, ऐसे ही नास्तिक से कहना है। क्योंकि क्यों नास्तिक से कहने की नौबत आ गई, क्योंकि हमने अपने को उस रूप मान के बैठे हैं, ये सारी चीज़ें मेरी है और ये शरीर मैं हूँ, ये सारे जो तत्वों की बात बताए ना, सात तत्वों में पूरे अजीव तत्व को मैं हूँ मान लिया, आश्रव तत्व को ये मैं हूँ और मेरे है ऐसा मान लिया, मैं तो मात्र जीव तत्व हूँ परंतु उसके बदले अन्य तत्वों को मिक्स करके ये मैं हूँ मान लिया, ये मेरे हैं मान लिया, ये उसकी भूल है। तो ये तू नहीं है ये नास्ति से समझा रहे हैं और उसी को कहेंगे आकिंचन धर्म। और अस्थि से समझाना है तो मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, वो बात आएगी फिर। यानी जो हम कहते हैं परिग्रह से रहित है, ये परिग्रह केवल हमने कितना जुटाया वो परिग्रह की बात नहीं है यहाँ पर। तो मैं इन चीज़ों से जुदा ही हूँ, मैं उनसे रहित ही हूँ, क्योंकि मैं तो स्वभाव भाव मात्र हूँ, ये स्वीकार करना यही तो धर्म की शुरुआत होगी। इसको कहेंगे आकिंचन्य धर्म। फिर यहाँ पुस्तक में से पढ़ते देखो, अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना यानी उसको छोड़कर अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं। किंचित मात्र इस शास्त्र में थे अणुमात्र परमाणु मात्र पर मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में हूँ, अन्य किंचित भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी नहीं है, परमाणु मात्र नहीं, लेश मात्र भी कुछ भी मेरा नहीं, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूँ, यानी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है इस विश्व में, मेरा किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, ये पहले में पहले नक्की करना है। और मेरा कहने से वो मैं मनुष्य हूँ और मेरा संबंध नहीं, ऐसा नहीं लेना है। मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान दर्शन में हूँ, क्योंकि जीव या आत्मा कहने से भी रागी द्वेषी भी आत्मा कहलाता है, पर यहाँ मैं आत्मा या शुद्धात्मा जब कहते हैं तो कौन सा वाला पार्ट लेना है आत्मा में से, वो स्वभाव वाला, वो मैं हूँ तो बाकी मेरा कुछ भी नहीं है, ये नक्की करना है। सबसे पहले श्रद्धा में नक्की होगा, श्रद्धा में नक्की होने पर भी बोली भाषा हमारी कोई जिद्दी नहीं होती। शास्त्र में आता है ना पूजा में, चोर न के पुर ना बसे, इसका अर्थ मालूम है? चोर के घर नहीं होते, अरे बड़े बड़े बंगले होते, उसका अर्थ क्या है? नहीं, आप कहेंगे कोई चोरन के पुर ना बसे का अर्थ क्या होता है? देखो चोरों की कोई ऐसी नहीं दूसरी बस्ती नहीं होती कि यहाँ सारे चोर रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो चोर जहाँ कोई भी होगी ना चोर हो सकते हैं, यानी ये चोरों की पूरा ये नगरी है, ऐसा कोई कहेंगे क्या थोड़ा? हाँ, यानी वो चोर को कोई अलग नगर नहीं होते, कोई भी चोर हो सकता है। जैसे हम कहते शादी ब्याहों में ऐसा होता है हमारी कोई घर की चीजें गायब हो रही है, तो उनमें से जो मेहमान है उनमें से कोई चोर होगा कि नहीं, कि चोर नाम का कोई उसमें बराबर यहाँ लिखा होता है ये चोर है, ऐसे कोई नहीं, ये शहर है ना ये चोरों का शहर है, ऐसे थोड़े ही होते हैं, उसको कहते चोरन के पूरा नाम से। तो यहाँ क्या कहते हैं, हमारी बात क्या रही हूँ कि अपने या स्वभाव की बात चली ना, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है और मैं भी अन्य किसी का नहीं हूँ, ऐसे अनुभव को, किसको कहा? अनुभव को। तो अनुभव होता है तभी कहेंगे कि बिना अनुभव के हो गए, कल बात आई ना अनुभव हो और केवली जाने, ये ऐसी बात कभी भी नहीं होती, किसी भी आगम में ये मान्य नहीं है। तो ऐसे अनुभव को, क्योंकि धर्म की शुरुआत हुई ये अनुभव बिना पता ही नहीं चलेगा, तो ऐसा अनुभव होना है। अनुभव हुआ कैसे हुआ कि जब हमने स्वभाव का अनुभव किया तो स्वभाव ज्ञान आनंदमय है, तो पर्याय में भी आनंद की प्राप्ति हुई, भले वो अल्प होगी परंतु उसका अनुभव होता ही है, और वो अनुभव हुआ तो हमें धर्म की शुरुआत हुई, तभी से धर्म की शुरुआत होती है। तो कहते ऐसे अनुभव को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। हाँ, यहाँ मुनिराजों की अपेक्षा बात की, और जो कोई ऐसा दलील करते कि बहुत अल्पकाल है इसलिए अनुभव ख्याल में नहीं आता, तो चौथे गुणस्थान वालों से तो सातवां गुणस्थान कम काल का है, ऊपर के गुणस्थान और कम काल के होते हैं, तो उनके अनुभव ही नहीं होता ऐसा मानना पड़ेगा। बिल्कुल हमें लॉजिक से इसका अर्थ समझना चाहिए। हे आत्मन, अपने आत्मा को देह से भिन्न, देखो किससे भिन्न जानना है, इसलिए हम अभी तक किसके यानी किस रूप अपने को मान रहे थे, इसलिए नास्तिक के साथ कथन कर रहे कि तुम देह से भिन्न हो, तुम राग से भिन्न हो, परंतु सबसे भिन्न हो, पर मैं कोई अस्तित्व में पदार्थ हूँ तो मेरा भी अपना कुछ वहाँ एग्जिस्टेंस होगा, उसके भी कोई गुण होगे कि नहीं होगे। तो वो अस्थि से जानते हैं और नास्ति से भी जानते हैं। ज्ञान अस्थि नास्ति, इसको विधि और निषेध कहते हैं या प्रतिषेध भी कहते हैं। ये ज्ञान का ही स्वभाव है, किसी भी चीज़ को जानता है तो विधि निषेध से ही जानता है। कथन में फिर ज्ञान तो एक समय में जानता है कि सफ़ेद है काला नहीं है, परंतु कथन के लिए हमें दो वाक्य बनाइए, सफ़ेद है और कहेंगे ये अन्य रंग वाला नहीं है। वचन में वहाँ तो क्रम पड़ेगा, परंतु ज्ञान तो एक ही समय में विधि निषेध पूर्वक जान लेता है। तो कहते हैं अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानमय अनुपम, यानी उसे दुनिया की कोई भी उपमा नहीं दे सकते, आत्मा को तो नहीं दे सकते, वो अनुभव को भी कोई दूसरी उपमा नहीं दे सकते। जो हमने इंद्रियों के द्वारा जो कोई वेदन किया होगा, किसी कोई मीठा का ज्ञान हुआ हमको, कोई तीखा का ज्ञान हुआ, कोई अन्य चीज़ों के हमने जो जिसको हम कहते वेदन होता है, परंतु ये आत्मा का जो अनुभव है वो जुदी जाता है। इसके लिए इसको कहते अनुपम, उसको कोई दुनिया की किसी चीज़ की उपमा नहीं दे सकते, ऐसे अनुपम। और कैसे स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, ऐसा लिखने की क्यों ना बताइए? हाँ बोलो। नहीं नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित ऐसा का उसका अर्थ क्या है? हाँ, अति इंद्रिय है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण है और उसकी पर्याय होती है, तो आत्मा में ये तो कोई है ही नहीं है। कल जो जीव तत्व की बात की थी ना, भूल उसमें क्या मानता था कि ज्ञान भी मेरा है, क्रोधादि भी मेरे हैं और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला भी मैं हूँ, ऐसे उसने सबको मिलाकर मैं की मान्यता कर ली। यहाँ तो कहते मैं कैसा हूँ, ज्ञान मैं हूँ, और तो उसमें देह से भिन्न हूँ, देह में रहते हुए देह से भिन्न है, देह के रहते हुए आत्मा के अनुभव में कोई रुकावट नहीं आती। हमने देखा अरिहंत भगवान को भी देह है कि नहीं है? अरे 14वें गुणस्थान के अंत समय तक देह है, परंतु देह से भिन्न पूरा अपना अनुभव वहाँ चल रहा है, तीन वहाँ तो अनंत सुख की प्राप्ति हुई। तो देह है, उससे कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं है, राग द्वेष हो रहे हैं वो बाधा नहीं है, बाधा किसकी है? ये मेरे है इसी मान्यता, वो मूल में मूल बाधक है। राग द्वेष आगे चलकर जब ये मान्यता छूटेगी तब कहेंगे वो राग द्वेष भी वो अपने क्रमानुसार छूट जाएगी, पर मुख्य में मुख्य बाधक बात कौन सी है कि मैं देह रूप हूँ, मैं राग रूप हो गया हूँ और उसी की रुचि है। और ये राग यानी शुभ अशुभ करते करते, अशुभ की बात छोड़ दो, शुभ करते करते, कोई क्रिया करते करते, कोई व्रतादि करते करते मुझे मोक्ष होगा, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। यही कह रहे ये आकिंचन्य धर्म में, ये सारा ये परिग्रह है सारा, ये मोह राग द्वेष क्या है, अंतरंग परिग्रह तो यही है, और इससे मैं रहित हूँ ये वहाँ कह रहे हैं। यानी इसको अपरिग्रह धर्म के रूप में भी हम इसको देख सकते कि मैं इन परिग्रहों से रहित हूँ। परिग्रह कौन से हैं? हमने देखे थे दो प्रकार होते हैं परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में क्या क्या लिया था? मिथ्या तो क्रोध मान माया लोभ और नौ नौ कषाय, तो मैं इनसे रहित हूँ। बाह्य चीजें तो अत्यंत पर पदार्थ है, जो मकान है, क्षेत्र है, धन धान्य, जो कुछ बाकी चीजें है, तो बिल्कुल मेरे से तो शरीर से भी जुदी चीजें है, उसकी तो बात छोड़ो, परंतु मैं तो इन मोह राग और द्वेष के परिणामों से भी मैं रहित हूँ, इन परिग्रहों से मैं रहित हूँ, वो आकिंचन्य धर्म है आत्मा का। और ये ऐसा रहित अपने आत्मा का अनुभव करना, वो पर्याय में आकिंचन्य धर्म हमने प्रकट किया, वही वीतरागता है। वीतरागता को ही अलग अलग पद्धति से यहाँ उसका लक्षण बता रहे हैं। देखो अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानमय अनुपम स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, यदि हम आत्मा को इंद्रियों के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे तो आत्मा जानने में आएगा कि नहीं आएगा, पहले नक्की कर। आंखें बंद किए तो क्या देखा? तो अंधेरा देखा, तो अंधेरा अंधेरा या उजाला ये क्या है, तो कुदरत की पड़ी है। हमें तो आत्मा को लक्षण के द्वारा जानना है कि जानने वाला वही मैं आत्म तत्व हूँ। अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण है, ये पूरा स्वाधीन है, क्योंकि मैं स्वभाव तो कायम है अनादि से अनंत काल तक है। और स्वभाव को जानने का साधन क्या है, तो हमारे ज्ञान दर्शन है, तो वो भी हर समय जानने जानने रूप पर्याय चल ही रही है। तो कितनी स्वाधीनता है, क्योंकि परद्रव्य में इस जीव का कुछ चलता ही नहीं, अनादि से कुछ नहीं चला, फिर भी पर में फेरफार करने की बुद्धि मिथ्या मान्यता सही हो रहा है। देखो, पर को समझाने का विकल्प आना वो तो राग है, परंतु मैं पर को समझा सकता हूँ ये मिथ्यात्व है। पर को बचाने का भाव आना ये तो शुभ भाव है, रक्षा का परिणाम, पर मैं दूसरे को बचा सकता हूँ ये मिथ्या मान्यता है, और ये मिथ्या मान्यता ही सबसे बड़ा पाप है। तो लोग पूछते हैं, हमको पर को बचाना कि नहीं बचाना, बोलो, पर को बचाना कि नहीं बचाना, आप क्या कहते हैं? मान्यता का निषेध है कि मैं बचा सकता हूँ, ये मान्यता का निषेध है। परंतु जिस भूमिका में होगा, चौथे वाला होगा, पांचवे वाला होगा, मुनिराज होंगे, बचा सकता हूँ ऐसा नहीं मान रहे, परंतु वो बचाने का राग आएगा। जो गृहस्थ को जो बचाने का राग आएगा, तो किसी को तो वेदना हो, पानी पिलाएगा, जो कुछ करेगा, औषधि उपचार करेंगे, तो मुनिराजों को बचाने का भाव आएगा कि नहीं आएगा, वो उसको पानी पिलाएंगे कि नहीं, कमंडल का, बोलो, नहीं। उनको तो ये दुखी है, क्योंकि वो तो अपने को शरीर रूप मान रहा है, उनको उपदेश का भाव आ जाएगा। जिस भूमिका में है वैसा भाव आएगा, मैं करूँ क्या ना करूँ ये बात ही नहीं मारे, क्योंकि पर में तो मेरा कुछ नहीं चलता। हाँ, उसकी अगर आयु बाकी है, आयु भी जिसको कहेंगे निमित्त का कथन है, उसमें मनुष्य पर्याय में रहने की योग्यता होगी उस जीव को, तब तक तो वो वहाँ रहेगा, और उसके अनुकूल उसके निमित्त स्वयं में वो मिलेंगे जिसकी बाकी है। ओके, नहीं वो वेंटिलेटर लगाना कि नहीं लगाना, ये करना कि नहीं करना, जिसकी जितने आयु है उसके उतने निमित्त भी मिलेंगे, पर मैंने उसको बचाया ये बात नहीं हो सकती। इसे मानने वाले मिलते हैं हमको, एक महिला थी स्वयं डॉक्टर, वो तो अजैनी थी और उसके मिस्टर तो अजैनी थे, अच्छे अभ्यास थे, तो देवलाली में आके मिली, बहुत दुखी थी, क्यों कि मेरे हस्बैंड अभी ऑफ हो गए, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो क्या किया आपने? नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर थी, बहुत बार उनको अटैक आया था, हार्ट अटैक वगैरह, मैंने बहुत 3-4 बार तो उनको बचाया, पर अंतिम समय में तो मैं बचा नहीं सकी, तो मैंने तो कुछ अभ्यास नहीं किया था, उनका अच्छा अभ्यास था। तो क्या हुआ, मैंने अंतिम समय में केवल उनको नमोकार मंत्र सुनाया और उनकी देहांत हो गई, मगर वो देह छूटते छूटते उनको बहुत समाधान दिखा कि मैंने पहली बार मेरी लाइफ में नमोकार मंत्र कहा, ऐसे उनका कहना। तो अभी मुझे उनसे मिलना है, कैसे मिलेंगे? बाकी अन्य मति थी तो 13 दिन तक दिया जलाया, वो घूमते रहते हो गए, ऐसा ऐसे वो सब चक्कर चलता है उनमें। यहाँ तो कहते कि 2 या 3 समय में तो जीव नया देह भी धारण करता है, ऐसा कोई भटकता नहीं, कुछ नहीं करता। तो कहते अभी मैं कैसे मिलूँ उनको, मुझे अभी उनको पर्वों में मिलना है। एक ही उपाय है, क्यों, वो जैनी थे, इतना शास्त्र का अभ्यास करते थे और बिल्कुल नमोकार मंत्र सुनते और स्मरण करते हुए तो स्वर्ग में गए हुए। तो आपको भी अगर वहाँ जाके मिलना है, एक बात करो, आप जैनिज्म का अभी अभ्यास शुरू करो, तो आप भी वहाँ जाएंगे, आपको जरूर मिलेंगे। अभी क्या कहेंगे उनको? यहाँ कहते अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण परम यानी उत्कृष्ट अतीन्द्रिय भय रहित अनुभव करो। अपने आप को कैसे अनुभव करो? इस तरह अनुभव कि मैं ज्ञानमय हूँ, तो मैं अनुपम हूँ, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण से जुदा हूँ, उससे बिना हूँ, उससे रहित हूँ, राग रहित हूँ, ये सब उसमें आ जाएंगे। ऐसे अपने जो स्वाधीन जो ज्ञानानंद में स्वयं से सुख से परिपूर्ण ऐसा स्वभाव है, उसका लक्ष्य करने से पर्याय में भी वो प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति होती है, जो है उसी की प्राप्ति होती है, कहीं बाहर से सुख आता नहीं है, कहीं बाहर से ज्ञान नहीं आता, बाहरी पदार्थों को देख देखने से ज्ञान नहीं आता है। तो शास्त्र पढ़ने से तो ज्ञान आता है ना, ज्ञान अपने से होता है तब शास्त्र का निमित्त सहज रूप से उपलब्ध होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज होता है, परंतु जो कुछ कार्य होता है वो उपादान से होता है। और हम अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, किसी भी समय किसी कैसी भी रोगी अवस्था हो, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, स्वभाव तो वहाँ साक्षात मौजूद है। और उसको जानने वाले ज्ञान की पर्याय तो हमारे हर समय जानना 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 हो रहा है। हम जो ये सात तत्व कहो या निमित्त उपादान कहो, क्रमबद्ध पर्याय कहो, इन आदि का जो अभ्यास करते हैं और उसका निर्णय हो जाते हैं, तब ये स्वभाव की सन्मुखता पूर्वक उसी को जानते रहने से हमें पर्याय में धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पहले में पहले हम अकिंचन्य स्वरूप है, इन सारे अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से हम रहित है, इसको स्वीकार करना। सभी बातें मान्यता में पहले नक्की करनी है, फिर वो जो पर्याय में जो कोई बातें होती है वो तो होती रहेगी। यानी ये धर्म की शुरुआत सारी मान्यता से होती है, और ये मान्यता के लिए आगम का अभ्यास भी जरूर है, क्योंकि अनादि से जिस पर्याय में जिस शरीर हमने धारण करते हैं उस शरीर रूप मैं हूँ, ऐसी बिना सिखाए मान्यता हो जाती है। उसके लिए उसको सिखाना की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु मैं इससे जुदा हूँ ये हमने आगम ग्रंथों से ज्ञानियों से हम जानते हैं। और ये ज्ञानियों की बात क्योंकि उन्होंने अनुभव पूर्वक बताई है और हम उसको समझते हैं और उस पर निर्णय करने की कोशिश करते हैं, तत्व विचार करते हैं, तो हमें भी उसका अनुभव पर्याय में हो जाता है। और यही धर्म प्राप्ति की उपाय है, यही मोक्ष का उपाय, इससे और कुछ बहुत कठिन कोई मार्ग नहीं है। जिस समय धर्म की शुरुआत होती है उसी समय से आनंद की यानी सुख की उपलब्धि होती है, और जितना आगे आगे अंतरंग स्थिरता होगी उतना अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता चला जाएगा, सुख और बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा दुख सहन करो और फिर बाद में सुख प्राप्त हो, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो मोक्ष इतना अपूर्ण जिसको कहें ना, अपूर्व कैसा अनंत सुख है, तो जो मोक्ष अनंत सुख में पर्याय है, अपनी ही पर्याय है, तो उसके पूर्व की जो पर्याय है मोक्ष मार्ग की, वो दुखमय कैसे हो सकती है, वो भी आनंदमय है। हाँ, आपका ये प्रश्न है बहुत अच्छा है कि आज तक हमें अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ नहीं है, तो ये अतीन्द्रिय आनंद है ये पता कैसे चलेगा। तो ये अतीन्द्रिय आनंद कब होगा, जब तत्व का निर्णय हो जाएगा और अपने स्वसन्मुख दशा में उसको प्राप्त होगा, तो उसको पता चल जाएगा। क्योंकि बच्चा हमारा अभी भी जन्मा है, उसको कैसे पता चलता है कि अभी भूख लगी है, रोना है, कैसा है, तो जिसको अभी तक ऐसा अनुभव कभी किया नहीं है और उसके तत्व विचार के काल में उसका अनुभव हो गया है, तब तो कोई इंद्रियों की तो बात नहीं थी कि कोई खा तो नहीं रहा था कि जो खाने का आनंद है, कोई अन्य तो विषय भोग नहीं थे उसके कि उसका आनंद है, कोई राग द्वेष का लक्ष्य नहीं था क्योंकि स्वभाव में राग द्वेष नहीं है। तो स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक उस तत्व विचार के काल में उसको अतीन्द्रिय आनंद स्वयं वो प्रकट हो जाता है, तो उसको वो अनुभव भी हो जाता है। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या ये मैंने जो अभी जो हुआ वो अतीन्द्रिय आनंद था क्या था, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे थे क्या कि हम ऐसा ऐसा ध्यान करते हैं, मैंने बोला बहुत अच्छा है, ध्यान के सिवा तो उत्पन्न नहीं हुई, तो हमें तो पता ही नहीं लगा, हमने पूछा किसी को कि हमें कुछ तो हो गया, तो उन्होंने बोला हाँ आपको समय दर्शन हो गया। क्या ऐसा समय दर्शन होता है कि किसी को पूछना पड़ेगा, बिल्कुल निशंक प्रतीति हो जाती है। जिस समय अनुभव होता है अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, उस जीव को कोई शंका नहीं रहती है, क्योंकि उसके पूर्व में उसने तत्व निर्णय में बिल्कुल शंका रहित उसने तत्व निर्णय कर लिया है। और ये जो स्वभाव भाव की बात है और अपने ही ज्ञान से अपने स्वभाव में स्थित हो गया, ये विकल्प की बात नहीं है। यहाँ तो विकल्प दशा में कहेंगे मैं गिरदेह में नहीं हूँ, मैं राग में नहीं हूँ, ये नहीं नहीं की बात होगी, या मैं ज्ञान दर्शन में हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये जो जल्प कहलाते हैं, तो वो जल्प भी वो विकल्प दशा है। जब तक विकल्प है तब तक अनुभव नहीं है, और जब अनुभव हो जाता है तो कोई भी विकल्प नहीं रहता है और केवल वहाँ सुख की आनंद की अनुभूति होती है। तो अज्ञानी भले पहले था, फिर अभी जिस समय उसको अनुभव हो जाता है उस समय वो जान लेता है और उसको ज्ञानी कहेंगे उसी समय से। क्योंकि जिसको अनुभव नहीं हुआ तो उसकी महत्ता किसकी होती है? अरे समय दर्शन, समय दर्शन हमको, समय दर्शन कब होगा, समय दर्शन कब होगा हमको, समय दर्शन कब होगा। लक्ष्य कहाँ है? पर्याय की तरफ। अरे स्वभाव भाव पड़ा है पूरा, उसकी महत्ता आती है कि समय दर्शन की महत्ता है? और स्वभाव है और उसके पर्याय सुनिश्चित है तो जाएगी कहाँ? आने से ही रही। इतना तो निशंक होना चाहिए था ना कि स्वभाव में परिपूर्ण हूँ, और वो कब प्रकट हो रही, अभी हुई क्या नहीं, अभी हुई क्या नहीं, नहीं समझे। स्कूल में क्या कहते थे हमको, कोई प्रैक्टिकल बताते ना कि बीज बो दो, घर में कोई डब्बा लो, मिट्टी डालो, उसमें एक बीज डाल दो अंदर। तो क्या करते थे हम, वो बीज डाल दिया, थोड़ा पानी दिया, एक एक घंटे में आकर ऐसा। हाँ अच्छा, आपको रेत कर रो तो मिट्टी निकाल कर देखते थे अभी बीज उगा के नहीं, फिर ढक देते थे, फिर बीज उगा के नहीं, ऐसे करते करते तो बीज ही नष्ट हो जाता है। तो हमें वो पर्याय की तरफ, इसकी उसकी महत्ता क्यों? ये समय दर्शन क्या केवल यहाँ यहाँ से उत्पन्न होने वाला है, ऐसे स्वभाव का अगर महात्म्य आ जावे तो उसी में लीनता हो जाती है और स्वयं वो ये सारी पर्याय, इसको हम धर्म की पर्याय कहते हैं, धर्म की दशा कहते हैं, वो स्वयं प्रकट हो जाती है। देखो यहाँ ये रत्नगण शापाचार में से मैं पढ़ती हूँ, यह देह है वह मैं नहीं हूँ, ये तो नास्ती से सारा कथन हो रहा है ना। अस्सी से यानी अपना स्वयं का वहाँ वर्णन चलेगा, नास्ती में मैं क्या क्या नहीं हूँ उसकी बात चल रही है। देह तो रस रक्त, रस यानी वो लिम्फ, जो रस अवयव अभी बताए कलर रस, जो जलने पर पानी वगैरह आता है इसको लिम्फ कहते हैं, वो रस होता है। रस रक्त हड्डी मांस चाम यानी चर्म में जड़ अचेतन है, मैं इस देह से अत्यंत भिन्न हूँ। देह में रहते हुए, क्योंकि अभी हमने देखा जीव कहीं से मरकर आया है और वही पुराने कर्मों के उदय के निमित्त से उसमें ऐसी कुछ पर्याप्तियाँ तैयार हो गई है और उसके कारण नए जो शरीर के परमाणु ग्रहण करके उसको शरीर रूप परिणमाने का उसकी शक्ति उत्पन्न है और वो शरीर रूप परिणमने का कार्य हर समय चल रहा है। इस देह के भी अनंत परमाणु हम हर समय लेते हैं, जैसे कर्म के अनंत परमाणु लेते हैं वैसे देह के भी अनंत परमाणु हर समय लेते हैं और पुराने में से कुछ अनंत परमाणु हर समय छोड़ते हैं। जैसे कर्मों में निषेक रचना होती है, ये देह में भी निषेक रचना होती है। कर्म की निषेक रचना तो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की होती है और भवमोहन तक चलती है। देह के जो परमाणु लिए है उसकी लास्ट लिमिट वही है जितनी आयु बांध के आया है, उससे आगे ये देह के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक समय भी अधिक नहीं रहने वाला है। ये जीव ही देह को छोड़कर जाने वाला है, यानी केवल आयु ही निश्चित नहीं है, देह की स्थिति भी निश्चित है। उसके एक एक परमाणु में वो उतनी स्थिति बंधी है कि कितने काल तक वो जीव के साथ जुड़ा रहेगा, उसके बाद जीव का उसका संबंध रहने वाला नहीं है। ये तो शास्त्रीय है ना, इसका साइंस है पूरा। हाँ तो कहते हैं कि इससे मैं अत्यंत भिन्न हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति कुल देह के है मेरे नहीं है, स्त्री पुरुष नपुसक लिंग देह के है मेरे नहीं है, यह गोरापना सावलापना राजापना रंगपना स्वामीपना सेवकपना पंडितपना मूर्खपना इत्यादि समस्त रचना कर्म के उदय जनित देह की है। क्योंकि कर्म का उदय है वैसा देह भी होता है, और जैसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो एक इंद्रिया बनेगी, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय में पांच इंद्रिया बनेगी, तो ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये तो पुराने कर्म तो हमने मोहराग्रह से बांधे, उसका उदय चल रहा है और वैसे वैसे शरीर की रचना हो रही है, वैसे वैसे ज्ञान की जो ज्ञानावरण की भी हीनादि दशा के कारण यहाँ पर भी हीनादि दशा हो रही है, तो ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा का स्वरूप बिल्कुल जो स्वभाव भाव कहते हैं परिपूर्ण चैतन्यमय, वो मेरा स्वरूप है, ये कुछ भी मेरा नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूँ, ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है, और हमने मैं इस रूप ही हूँ मान लिया है, फिर उसी के सेवा चाकरी में रात दिन अपनी बात बीत जाती है। मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव्य की उपमा रहित अनुपम है। अब ये जो सारे जो पुद्गल के जो कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण है उसका विस्तार से यहाँ स्वरूप बताया, स्पर्श की जो पर्याय है वो पुद्गल की ही मेरी नहीं है, रस की जो पर्याय वो पुद्गल की ही मेरी नहीं है, इस तरह से जो जो पुद्गल के गुण है उस पर लगाते जाओ। अब कहते इन पुद्गलों को देखकर जो राग द्वेष मोह हो रहा है वो भी उसके खाते में चले जाए, वो भी कर्म के निमित्त से होते हैं, क्योंकि सिद्धों के तो नहीं हो रहे और मेरे आपके क्यों हो रहे हैं, तो कहते पुराने कर्मों के उदय से हुआ, तो ये भी मेरे नहीं। इस तरह से अपना स्वरूप निश्चित करने के लिए ये कर्म के उदय जनित भले उसका निमित्त है, जीव ही उस रूप परिणमित हो रहा है, फिर भी उसको कर्म के उदय जनित कहकर उससे अपना संबंध पहले में पहले छुड़ा है। वो रहेगे साथ में, पर्याय में राग द्वेष मोह है, परंतु मैं उस रूप नहीं हूँ ऐसा नक्की करके, जो मैं ज्ञानमय हूँ उसका लक्ष्य करके उसी में एकाग्र होना, यही धर्म प्राप्ति का उपाय है। और इसी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य भव जो अवसर मिला है, उस अवसर को हम अधिक से अधिक उसका उपयोग करके आगे बढ़े। अब इसी भावना से अभी यहाँ बोलो 2400 भगवान।